Okay, thank you.
Om Shanti. लंदन में भी मिलते रहते हैं, भारत में भी मिलते रहते हैं, मधुबन में, परंतु लेस्टर में आकर मिलना एक अलग आनंद होता। और अभी दो सप्ताह मैं फिर दोबारा भारत का चक्कर लगाकर आई, एक सप्ताह अहमदाबाद और एक सप्ताह शांतिवन। उस बीच में एक दिन नहीं, आधे दिन के लिए भी नहीं, कुछ घंटों के लिए ऊपर जाना हुआ पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। आप जानते हैं कि दादी की अचानक कुछ तबीयत नीचे ऊपर हो गई थी, सब ठीक चल रहा था और जिस दिन दादी को फ्लाई करके लंदन आना था उसी दिन दादी को हॉस्पिटल में जाना हुआ, तो ड्रामा कहेंगे। परंतु फिर दादी जैसे ही थोड़ी ठीक हुई तो पूछने लगी, आप यहाँ कब तक हो? जेमिनी बहन से पूछे, आप कब जाने वाले हो? तो हम लोग को लगा कि हाँ दादी अभी ठीक है। तो फिर हमारा प्रोग्राम एक दिन के अंदर बन गया वापस आने का। जाने का प्रोग्राम अचानक, मैं सुरीनाम में बैठी थी, साउथ अमेरिका, बहुत दूर, परंतु ड्रामानुसार मैं सुरीनाम से भारत पहुंची हूँ और मंदा बहन और जेमिनी बहन मेरे से थोड़े घंटे पहले ही पहुंची। तो मुझे विश्वास हो गया है विश्व के कोने पर कहां पर भी होंगे मधुबन जल्दी पहुंच सकते। तो अच्छा समाचार तो ये है कि दादी की तबीयत अभी 90% तो कहेंगे ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इस आयु में तो चलता रहेगा। परंतु दादी आजकल मैसेजेस भी भेजती रहती है, आप लोगों के पास मैसेजेस आते रहते हैं, जसू बहन भेजती है ना? ओके, लेस्टर वाले हाँ कह रहे हैं, कोवेंट्री वाले आते हैं दादी के मैसेजेस, बर्मिंगम आते हैं, गुड, ओके। क्योंकि कल भी एक मैसेज था, वो ऑडियो था, और आज फिर वीडियो मैसेज था। तो दादी अपना समय, बेशक हाल फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है एक ही स्थान पर बैठने का, परंतु जब तक वो चलेगा देखेंगे। दादी का कई बारी जब बातचीत करती है लगता है कि दादी को भी थोड़ी हम सबकी प्यार की डोर खींच रही है, परंतु हाल फिलहाल तो दादी जो भी कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं आबू में, आप जानते हैं कि ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंसेस विंग्स वालों की, पांडव भवन में बठियां चलती है, शांतिवन में भी कुछ न कुछ, दैट्स राइट, रिट्रीट्स चल रही हैं, तो ये सब कुछ चालू है। तो दादी हर एक को मैसेजेस भेजती रहती है, और विदेश में भी जहां जहां दादी को पता चलता है कि कुछ विशेष कार्य है तो दादी संदेश अपना भेजती रहती है। तो दादी की विश्व की सेवा चालू ही है। बाकी पहली टॉपिक मैं ये उठाती हूँ, समय की पुकार, क्योंकि दादी ने खास मुझे वापस क्यों भेजा, क्योंकि दादी को पता चला, दादी पूछने लगी अभी वहां क्या चल रहा है। तो पहले तो 19 मई को कॉल ऑफ टाइम शुरू हुआ डायलॉग, उसमें टॉपिक थी परिवर्तन की, बाहर वालों की परंतु परिवर्तन की टॉपिक। और फिर उसके बाद अभी बुधवार के दिन साइलेंस रिट्रीट चालू हुई, उसका फिर नाम था कॉल ऑफ टाइम परंतु एक्सपेरिमेंट्स इन साइलेंस, साइलेंस के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। और आजकल बाबा की मुरलियां तो आप सुन ही रहे हैं, कल का था संकल्प का महत्व, और जो साकार मुरलियां चल रही है उसमें भी आप सुन रहे हो बाबा याद याद याद। और भी कोई टॉपिक आ रही है बाबा की मुरलियों में, साकार मुरलियों में? श्रीमत, श्रीमत और याद, अनेक पॉइंट्स बाबा देते हैं, परंतु ये दो टॉपिक्स विशेष चालू ही रही है कुछ समय से लगता है। और अभी बाप दादा तो हमेशा स्थिति पर ध्यान खींचवाते ही हैं। तो पहले मैं टॉपिक उठाती हूँ वो समय की क्या पुकार है, और उसमें जब हम देखते हैं समय को, तो ये तो आप कहेंगे कि बहुत समय से हम सुन रहे हैं कि समय नाजुक है, परंतु रियली विशेष अभी नजर आता है कि हर बात अपनी अंतिम घड़ियों में चल रही है। कोई भी प्रकाश से देखो, और फिर यज्ञ को देखो, तो यज्ञ में जिन्होंने यज्ञ की स्थापना के कार्य में इतना अपना जीवन समर्पण करके सहयोग दिया 80 वर्षों से, अभी यज्ञ को 80 वर्ष हो गए, तो 80 वर्षों से दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी रतन मोहिनी, दादी ईशु, बाकी बची हैं ये चार मुख्य। और जब हम सब पहले आए बाबा के पास, सब दादियां हाजिर थी उस समय, सिर्फ मम्मा अव्यक्त, बाबा अव्यक्त, परंतु 70s में तो सभी दादियां हाजिर थी। फिर धीरे धीरे हम उन्हों की विदाई करते गए हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि दादियों के बाद क्या, आपके मन में भी उठा होगा। तो इस कारण से अब भी ये प्रश्न कि समय क्या कहता, ब्राह्मणों के लिए समय की पुकार क्या है, ज्यादा ही आवश्यक नजर आ रही है। 100 वर्ष तक भी दादी यहां तक पहुंची, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बचपन से दादी को देखा कि तबीयत नाजुक चली है। 60s में दादी का देह त्याग करने का समाचार हम सुन रहे थे, दादी की ऐसी स्थिति है। फिर ड्रामा अनुसार बाबा को कार्य कराना है, तो बाबा आगे बढ़ाते गए, जीवन की आयु बढ़ती गई। अभी भी जब डॉक्टर्स ने देखा कि दादी की कंडीशन क्या थी हॉस्पिटल में, और फिर आकर घर पे दादी से मिले लोटस हाउस में, तो कहते थे कौन चला रहा है, ऊपर वाला कोई शक्ति देके चला रहा है, ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है, डॉक्टर्स की शक्ति तो बिल्कुल नहीं है। एक डॉक्टर ने तो दादी को हंस के कहा कि दादी आप कभी डॉक्टर्स के पास नहीं जाना आगे के लिए, आप कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना, वो आपकी सारी एनर्जी ले लेंगे, डॉक्टर खुद दादी को राय दे रहा है। तो दादी तो पहले से ही ये बातें मानती है, तो दादी तो कहती है कि मुझे नहीं देखना है हॉस्पिटल का दरवाजा। परंतु ये भी एक नई जीवन दादी को फिर दोबारा मिली। तो दादी का अभी भी ये प्रश्न, बाबा क्यों मुझे यहां रखता। और हम लोगों के लिए भी प्रश्न कि अभी जो बाकी समय है, इस समय में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि दो बातें हमें करनी होंगी। जब बाबा अव्यक्त हुए, तो उस समय जो फर्स्ट मुरली बाबा ने चलाई थी, बाबा ने विशेष एक बात पर हम सबका ध्यान खिंचवाया था, 21 जनवरी 1969। उस समय सिर्फ शिव बाबा आए थे। बाबा ने कहा था कि आज ब्रह्मा बाबा साथ नहीं आए हैं, यदि ब्रह्मा बाबा को साथ लाते थे आप लोग वापस जाने की छुट्टी नहीं देते थे, तो इसलिए शिव बाबा अकेले आए हैं। फिर और आगे बाप दादा इकट्ठे आएंगे और मिलते रहेंगे, फिर तो वो तो आप लोगों ने सब सीन देखी है। तो बाबा ने उसी समय कहा था कि आप सभी हो धरती के तारे, तो जैसे आकाश के तारे बहुत सुंदर रिमझिम आपस में नजर आते हैं, बहुत सुंदर उनों की रूपरेखा नजर आती, अभी धरती के तारों की तरफ सबका ध्यान है कि ये जो आत्माएं कलयुग में अंधेरी रात में रोशनी लाने वाले हैं, तो धरती के तारे हैं, तो उनों का कहां तक आपस में एकता रहती, सहयोग रहता, स्नेह बना रहता। क्योंकि वैसे भी जब कोई बड़ा जाता है तो उथल पाथल होती। तो उस समय जो बाबा ने पहले से ही वार्निंग दी थी कि अनेक होते भी आप सब एक कैसे हैं, सभी न सिर्फ बाबा देखने चाहता परंतु विश्व देखने चाहती। और फिर बाबा ने दादियों को निमित्त रखा, दीदी दादी उस समय, फिर दादी जानकी भी, फिर औरों को भी मिलाया बाबा ने। तो उन्होंने अपनी यूनिटी के आधार से आपस में जो उनका रिस्पेक्ट है, आपस में जो उनकी इतनी एकता है, उस आधार पर यज्ञ को यहां तक पहुंचाया। 33 इयर्स साकार बाबा ने यज्ञ को एक करके बांध के रखा, और उससे अधिक समय अव्यक्त पाप दादा ने हम सबकी पालना करके दादियों के द्वारा यज्ञ को एक बनाकर रखा। उसमें भी जब दादियां इकट्ठी हुई थी यज्ञ के स्थापना के आदि में, तो बहुत करके वो एक ही कम्युनिटी के थे। उसमें मैं समझती एक मुसलमान बहन थोड़े समय के लिए आई, फिर उनके परिवार वाले उनको घर लेके गए तो ज्यादा समय नहीं रही, और एक गुजराती बहन थी आनंदी बहन जिसकी कहानी दादी कई बार सुनाती थी। बाकी तो वहां की जो कम्युनिटी थी सिंध की वो ही थे, तो भी हर एक के संस्कार तो अलग अलग ही होते, परंतु उनका आपस में इतना प्यार तुरंत ही जुट गया जो आज तक भी आप देखते हो कि दादी जानकी, दादी गुलजार उससे 10 साल कम है आयु में, दादी गुलजार की भी आयु 90 है, परंतु हम उसको छोटा मानते हैं, दादी के हिसाब से वो अपने को छोटा मानती है, तो वो दादी को दादी कहती, दादी उसको दादी कहती, ये भी एक रिस्पेक्ट और प्यार की भाषा। और फिर कितना भी उनका खुद का विचार अलग अलग हो, यानी दादी प्रकाशमणि से एक बारी पूछा था कि दादी आप लोगों को कितना समय लगा अपने सब विचारों का अलग अलग जो थी वो सब मिला करके फिर एक मत होने में, तो दादी ने कहा मतलब, दादी को प्रश्न ही समझ नहीं आया, फिर मैंने रिपीट किया, दादी आप लोगों के तो अलग अलग विचार थे ना, फिर आप सब एक मत कैसे हो गए। तो दादी ने कहा कि कुछ टाइम नहीं लगा, तो फिर कहा कि हम सभी ऐसे समर्पण बुद्धि थे जो बेशक अपना विचार कुछ भी था, हम लोग उस समय ये सोचते थे कि बाबा की राय क्या है, बाबा का विचार क्या है, बाबा क्या कहता, तो जब बाबा की बात आ जाती थी तो उस समय हम सबके विचार समाप्त हो जाते थे, बस जो बाबा ने कहा वो हमने स्वीकार किया। तो दादी ने कहा कि बस तुरंत ही जैसे ही हम समर्पण हुए तो हम सब अपने को एक ही परिवार के मानने लगे, और बाप बाप है तो बस वही चलता रहा। और फिर हम देख रहे हैं कि कैसे उनके स्नेह की शक्ति ने हम सबको भी एक परिवार में बांध के रखा है। दादी जानकी जब लंदन में रहते थे और कोई भी बात होती थी, पहले तो कब कब फोन की बात होती थी, परंतु कोई भी बात होती थी तो दीदी दादी के पूछने के बगैर दादी नहीं करती थी। और फिर जब दादी जी की तबीयत थोड़ी ढीली होने लगी, दादी प्रकाशमणि, तो दादी जानकी सवेरे शाम दादी प्रकाशमणि को फोन करके पूछती थी दादी की तबीयत के लिए, दादी के विचार के लिए, कोई भी बात के लिए। तो ये है प्यार और रिस्पेक्ट। तो एक बारी मैंने देखा कुछ बॉम्बे का प्रश्न उठा था, और दादी जानकी बॉम्बे के कनेक्शन में भी थी, तो दादी जानकी ने मेरे साथ बातचीत की और कहा कि मेरा विचार इस बात पर ये है मैं दादी जी से बात करके देखती हूँ। फिर जब फोन किया, दादी जी का कुछ अलग विचार था, तो दादी ने कहा कि दादी जो आपका विचार वही ठीक। दादी जी का बिल्कुल अलग विचार था, परंतु दादी जानकी ने मुख से अपना वर्णन भी नहीं किया कि मेरा विचार पहले ये था और अभी आपके कहने से मैं इस विचार पर आई हूं। बस दादी जी ने कहा, दादी ने माना। तो ये मेरे अनुभव की बातें हैं कि किस तरह से, और आप लोगों ने भी देखा होगा, मुझे वो दिन भी याद आते कि जब हम सब पांडव भवन में होते थे, तो दादी जानकी इंद्रप्रस्थ में है, दादी प्रकाश मणि अपने कमरे में है, दीदी जी अपने कमरे में है। किसी ने आकर प्रश्न पूछा तो दादी जानकी ने मुझे कहा कि आप दादी जी से जाके पूछो, और यदि दादी कहे कि मेरा विचार क्या है तो आप बताना ये मेरा विचार है। तो दादी का वो संदेश मैं लेके गई दादी जी के कमरे में, दादी जी को बताया कि ये है प्रश्न और ये है दादी का विचार, दादी आप क्या कहते, दादी कहती उस अनुसार करेंगे। दादी जी फिर क्या कहती कि दीदी के पास जाओ, दीदी से पूछो दीदी का विचार क्या है। तो फिर मैं गई, तब सब पांडव भवन में तो नजदीक थे, तो मैं गई दीदी के पास। तो दीदी कहे, दादी जानकी ने क्या बोला, दीदी बड़ी दादी ने क्या बोला, खाली उन्होंने कहा सुना, फिर कहा कि हाँ ये दोनों बातें ठीक है, अभी ऐसे करना है। तो एक दो के राय को इतना वो वजन देते थे, और कभी ये नहीं कोई कहता था कि मैं राइट हूं, नहीं, जो उन्होंने का विचार। इस तरह से कारोबार चलती रही है और आज यहां तक पहुंचे हैं। जो अभी किसने कहा कि कोई बात थी, हम बाबा से प्रश्न पूछे, तो मैंने कहा कि बाबा से कैसे प्रश्न पूछेंगे, तो कहा दादी गुलजार। मैंने कहा दादी गुलजार तो आजकल बाबा के पास उस तरह से नहीं जाती जो वो आपको आकर उसका उत्तर देवे। तो हम लोग चुप हो गए, तो मैंने ज्यादा नहीं बोला उस समय, परंतु फिर मुझे यही ख्याल आया कि जब बाप बुजुर्ग होता और बच्चे बड़े होते, तो बाप हमेशा चाहता कि बच्चे ही अपने आप मिल करके डिसाइड करें। और कई बारी आपने ये अव्यक्त बाप दादा की सीन देखी होंगी, क्योंकि माइक्रोफोन आजकल हमेशा होता है और वीडियो पर सब कुछ नजर आता। तो कई बार बाबा से जब कोई बात पूछी जाती थी, जब बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो बाबा कहते थे आपस में मिल करके राय करो और फिर बाबा को बताना। ये आपने सुना होगा कई बारी, मिलकर राय करो, मिलकर राय करो, बाबा का ये मंत्र हो गया था। तो अभी जबकि हम देखते हैं कि दादियों की नाजुक तबीयत चल रही है, चारों की ही, एक की नहीं चारों की ही, तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त इशारा मिल रहा है कि परिवार का बिल्कुल एक संगठन, मजबूत संगठन हम बांध के रखें। बाबा ने उस समय भी 69 में कहा था कि सब देखेंगे कि अभी ये लोग एक बन के रहते हैं या अनेक संस्थाएं बन जाती है। तो ड्रामा में जो पार्ट था वो तो आप लोगों ने देखा, यज्ञ तो एक ही है, अनेक यज्ञ नहीं है, बेशक छोटे छोटे यज्ञ है परंतु वो भी बड़े यज्ञ में ही शामिल है। तो अब जबकि ये सीन पर पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक मुख्य परीक्षा हम सबके सामने अभी भी है और आगे भी यही चलेंगी, परंतु इसी परीक्षा से हम जो पास करेंगे उससे ही लोगों को पता चलेगा कि ये कार्य करने वाला कौन। बेशक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स अनेक टीचर सामने हैं, परंतु कार्य है उसका। तो अब जबकि हम आपस में मिलते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, तो यदि हमारे बुद्धि में ये रहता कि बाबा क्या कहते, मेरा विचार है, आपका विचार है, ये सब बातें सेकंड बात रही, बाबा क्या कहता, यदि हम ये सोचे तो फिर मुझे लगता है कि हम सब इकट्ठे मिल करके आगे बढ़ सकते। यही प्रश्न मुझे ऑक्सफोर्ड में दिया गया था परसों रात्रि को, क्योंकि कल सवेरे ऑक्सफोर्ड में ही क्लास कराया था। तो फिर जब मैंने कहा कि परिवार की यूनिटी की ही बड़ी परीक्षा आती है, तो उन्होंने कहा कि परिवार में यूनिटी का आधार क्या, तो उसका विचार था एक पर्पस है, हम सबका एक ही लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य से यूनिटी आती। तो मैंने कहा कि उसमें भी उसका फैक्टर तो आता ही है, परंतु मुझे लगा कि विश्वास, परिवार में विश्वास रखना, उस आधार से ही यूनिटी बन सकती। क्यों? क्योंकि जब आपस में ये विश्वास है कि हम सब एक ही परिवार के हैं, बाबा कहते हैं कि आप ईश्वरीय कुल के हो, आप दैवी घराने के हो, आप सब बाप एक बाप के बच्चे हो, तो जब ये शब्द हम सुनते हैं तो कहां तक हमें ये लगता है कि हाँ वास्तव में हमारा ये परिवार है। बीच में एक स्थान पर मैं थी और वहां पर दो है लौकिक परिवार के और एक तीसरी है जैसे बहन वहां की ही, परंतु प्रश्न कुछ आया तो उसमें जो दो थे तो उन्होंने कहा कि हम फलाने को फोन करके पूछते हैं कि इसका हमको क्या करना चाहिए, और जिसका नाम उन्होंने लिया उनकी लौकिक मदर है, वो भी ज्ञान में है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अनुभवी है, उसको इस बात का मालूम है। मैंने कहा कि आप उसको लौकिक माँ की दृष्टि से फोन करके पूछ रहे हो या अलौकिक हिसाब से आप फोन करके पूछ रहे हो, तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, लौकिक को या अलौकिक को। तो जबकि हम बाबा के बने हैं और बेशक लौकिक भी अलौकिक हो गए, कभी कभी लौकिक वाले अलौकिक नहीं होते हैं, वो अपना अलग रास्ता लेते हैं, वो भी ड्रामा, परंतु जब लौकिक भी अलौकिक हो जाते, परंतु उसमें भी हम ये सोचे कि हम कोई राय पूछते हैं तो किस आधार पर पूछते हैं, लौकिक संबंध के आधार पर या अलौकिक संबंध के आधार पर। और जब हम अलौकिक परिवार में, परलौकिक परिवार तो विश्व भर हमारा परलौकिक परिवार है, तभी मैं अलौकिक परिवार कहती, परंतु जो अलौकिक परिवार के बन गए, हम सबका एक बाप, हम सबका एक परिवार, हम सबका एक लक्ष्य, हम सबका एक कर्तव्य, हम सबका एक ही धर्म, तो जब हम इस बात को स्वीकार करके मान करके चलते हैं, तो हाँ ये भी मालूम है कि जो संपन्न हो गए वो तो शरीर छोड़ के और आगे अपनी सेवाएं कर रहे हैं, परंतु जो हम सब इकट्ठे यहां बैठे हैं कोई भी संपन्न नहीं बना है, परंतु विश्वास है कि हाँ हर एक बाप का बच्चा है, हर एक अपना पुरुषार्थी है, और यदि हम उन्हों को उस विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, जैसे बाबा, बाबा किस दृष्टि से हमें देखता, बाबा की दृष्टि हमारे प्रति इतनी स्वमान की दृष्टि होती जो हम सबका खुद का नशा चढ़ जाता, हम क्यों मधुबन भागते हैं। आजकल तो वीडियो पर भी बाबा की मुरली बाद में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या दूर बैठे भी बाबा ऑनलाइन देख सकते, परंतु तो भी मधुबन की यात्रा चालू ही होती, सब भागते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जिस घरे उस संगठन में बैठे होते हैं बाबा की हाजिरी होती और बाबा जिस दृष्टि से हमें देखता, हम सबका स्वमान बहुत ऊंचा हो जाता। बाबा के महावाक्य भी ऐसे होते जो बाबा हमारे स्वमान को आगे बढ़ाता। और यदि हर रोज जो हम मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं, साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, आप सोचो कि बाबा हमारा स्वमान कितना आगे बढ़ाता है हर मुरली के द्वारा। हमें याद दिलाता कि हम किस धर्म के हैं, हम किस परिवार के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। बाबा सब बातें हमें याद दिला करके स्वमान बढ़ाता। क्यों? क्योंकि बाबा को विश्वास है कि यही बच्चे हमारे कल्प पहले वाले बच्चे हैं। हम खुद अपने स्वमान को इतना नहीं जानते जितना बाबा हमें याद दिलाता और बार बार याद दिलाता ही रहता, फिर भी हम भूल जाते। परंतु हम उस स्थिति को हम बना करके रखें और जब हर रोज हम मुरली पढ़ें या सुनें, उसी कॉन्शियसनेस से हम पढ़ें कि बाबा के सन्मुख हम सुन रहे हैं, तो हमारी कितनी स्वमान की स्थिति बढ़ सकती। और ये तो बिल्कुल देखा गया है कि जब हम अपने स्वमान में स्थित है, हमें अपने में विश्वास पक्का होता। क्यों? क्योंकि स्वमान की स्थिति में जो हमारे आंतरिक वैल्यूज है, जो हमारे आंतरिक गुण है, मूल्य है, उस अनुसार हमारी जीवन का कारोबार चलता। और जब स्वमान की कमी है, मीन्स देह अभिमान में हम आए, तो जब देह अभिमान में हम आ जाते हैं तो उस स्वमान की कमी से हम नीचे आ गए, तो फिर इस स्थिति में आप सोचो कि खुद का अपने में विश्वास कम हो जाता। क्योंकि देह अभिमान में हम कहेंगे हाँ मूल्य तो ये कहती हैं, परंतु आज के संसार में या इस हालत में उस अनुसार चलना कठिन है। हम बहाने बनाने लगते हैं। और जब जब हम ऐसे करते हैं या कोई भी कुछ आदत के हम वश हो जाते हैं, तो उस समय भी स्वमान खुद का कम हो जाता। कोई भी आदत, बाहर की आदतें तो जल्दी छूट जाती, अंदर की जो आदतें हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। परंतु जब हम देखते हैं कि आदत के हम मजबूर हैं, तो हमारी स्वमान की स्थिति नहीं बन सकती, हम अपने में विश्वास नहीं रख सकते। तो अपने में विश्वास रखना, अपने स्वमान में स्थित रहना और अपने जीवन के रास्ते को ठीक करना, फिर हम औरों में भी विश्वास रख सकते। बाबा ने ये जो मंत्र दिया है इनसाइड आउट, जो कुछ अंदर चल रहा है वही बाहर नजर आता। जो हमारा संबंध होता, संबंध में वही बातें नजर आती है जो अंदर की बातों में हम गुजर रहे होते। तो अंदर का स्वमान तो बाहर में, किसी को मान देना, किसका स्वमान रखना बहुत नेचुरल होता। और यदि हम एक तो को उस तरह से विश्वास से जानकर हम आपस में संगठन बनाकर रखते हैं, तो उस संगठन में बहुत शक्ति रहती है, उस संगठन में एकता बनी रहती है। तो हर बात में पहले अपने आप को देखना होता है कि अंदर मेरे में क्या चल रहा है, फिर वो बाहर के संबंध में बात नजर आती। तो एक तो ब्राह्मणों के लिए समय की पुकार ये है, क्योंकि जैसे उस समय बाबा के जाने के बाद भारत में सबका ध्यान गया, ये लोग क्या करेंगे। अभी तो विश्व की बात हो गई, उस समय सिर्फ भारत की बात थी, आज विश्व की बात है। और दादी जानकी विश्व में प्रसिद्ध है और सभी जानते हैं कि दादी की आयु अभी कहां तक पहुंची है। तो कहीं तो मुख से वर्णन करती हैं कि आप लोगों का कैसे कारोबार चल रहा है अभी, और कहीं वर्णन नहीं कर रही हैं, परंतु देख रही हैं कि दादी की इस आयु अनुसार इनों का कैसे संस्था चल रही है, कैसे कारोबार चल रहा। दूसरी बात जो पर्सनल बात आती है, अपनी स्थिति की बात, समय अनुसार मुझे लगता है कि जो हम दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, जो हम आत्मा के आदि जो सत्युगी संस्कार थे, अनादि जो आत्मा के निज गुण के संस्कार है, यदि आज हमने उन्हों को जीवन में प्रकट नहीं किया, इमर्ज रूप से हम उस अनुसार वो गुण, वो शक्तियां, वो मूल्य अपनी जीवन में वो अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर कब होगा। मैं समझती, मैं भारत में ही थी जब 14 मई को एक बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा था ग्लोबल हाउस में, जिसमें 100 माताओं को अवार्ड दिया गया दादी जानकी के यादगार में। तो दादी जानकी तो उस समय मधुबन में भी नहीं, अहमदाबाद में ही तब तक बैठी थी, और उस समय तो ऐसी भी तबीयत नहीं थी, तो जारी उनको कुछ वीडियो मैसेज भर के भेजे, उन्होंने खास मांगा था परंतु हो नहीं पाया। परंतु वो 100 माताओं ने, जिन्होंने यूके में, खास वो यूके के कनेक्शन से रखा था, स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ाया है देश को, आप लोगों ने सुना होगा समाचार। तो वो सारे यूके से नाम भी आए थे, और फिर नॉमिनेट करके एक कमिटी थी जिन्होंने सारा वो देख करके फिर उनको वो अवार्ड दिया था। तो एक माता ने उस प्रोग्राम में ये शब्द कहा है, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट मी देन हु। ये दो सेंटेंस में सारा सब कुछ आ जाता। यदि अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और यदि मैं नहीं करने के लिए तैयार हूं तो और कौन करेगा, राइट। तो ये खास दो बातें बहुत मुझे अच्छी लगी, छोटे सेंटेंस है परंतु समरी आ जाती है कि हमें क्या करना है। तो अब हम बता रहे हैं सभी को कि कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है, और सत्युग के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, और यदि आज हमने वो तैयारी करके उनों का रूप रेखा प्रकट नहीं किया, तो कैसे विश्वास कोई करेगा कि हाँ सत्युग आ रहा। हम खुद ही कैसे विश्वास करेंगे कि हाँ हमने माना सत्युग आ रहा, परंतु मैं सत्युग में जाएंगी या नहीं कैसे पता है मुझे, जबकि इतने हमारे वो क्वालिफिकेशंस हो तो हम कहेंगे हाँ सत्युग भी आ रहा और हाँ हम सत्युग में हाजिर होंगे। जहां तक हम पहुंचे हैं और जहां तक और आगे हमें जाना है, दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि हाँ बाबा की मदद से यहां तक आए हैं, परंतु आगे पहुंचने के लिए अभी तक इतनी मार्जिन है, तो मार्जिन को कंप्लीट करने के लिए मुझे अब क्या करना है। तो हमारी स्थिति ऐसे हो जिसमें जो दैवी गुणों का हम वर्णन करते हैं, आदि आत्मा के स्वरूप, अनादि आत्मा का स्वरूप हम बताते हैं, वो बिल्कुल हमारे जीवन में अभी नजर आनी चाहिए। नहीं तो लगेगा कि या तो सत्युग अभी बहुत दूर है, या तो ऐसे लगेगा कि शायद हम तैयार नहीं हैं सत्युग में जाने के लिए। ड्रामा कब तक रुक सकता है, सबके लिए तो ड्रामा नहीं रुकेगा, जो ड्रामा की घड़ी है उस अनुसार ड्रामा आगे जाएगा, परंतु अभी हमें अपने लिए तो समय आज मानना होगा कि अभी हमको ये करना है। तो अपनी स्थिति के अनुसार ये खास बात ध्यान पर आती है कि जो भी फर्क हो उसको हम मिटाते जाएं। जब हम ये बात याद रखते हैं कि जो आत्मा का आदि अविनाशी स्वरूप है वो ही मेरा नेचुरल स्वरूप है। क्या होता कि जैसे उस दिन बाबा ने कहा कि आप लोग माया माया कह करके उसमें ही थक जाते हो, उसको ही ज्यादा वजन देते हो, परंतु नहीं, फर्क है, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं हूं दैवी आत्मा, मैं हूं शिव बाबा की संतान, मैं हूं ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ये सब जान करके ये अब हमारा नेचुरल स्वरूप किस तरह से हो, यदि हम ये याद रखते हैं तो मेहनत की बात नहीं है, परंतु वो जो आत्मा के अंदर है पहले से ही है पार्ट, अब उस पार्ट को इमर्ज करना है, दैट्स ऑल, सहज है। बाकी जो दीपिका बहन ने टॉपिक दी उसको भी मैं थोड़ा बताती हूं, क्योंकि जब मैंने ये बात दादी के द्वारा सुनी थी, दादी जानकी के द्वारा कुछ वर्ष पहले, फर्स्ट टाइम मेरे लिए इतना क्लियर पिक्चर था, क्योंकि ये शब्द हम सुनते हैं परंतु एक तो प्रैक्टिस की भी कमी होती, परंतु इतनी क्लैरिटी भी नहीं होती कि एक एक स्थिति का मतलब क्या, क्योंकि शब्द नजदीक तस्दीक लगते हैं। तो एक शब्द ये आता है देभान देही अभिमानी, तो देभान तो चलो ये देही अभिमानी स्थिति कैसे पहचान हो कि हाँ हमारी देही अभिमानी स्थिति है, तो उसमें दो छोटी सी बातें जो हम लोगों के मुख पर आती है वो बात यदि हम थोड़ा सोचें तो हमें पता चलेगा कि किस परसेंटेज में हमारा अधिक समय होता। जब देवहान है तो एक शब्द हमारे मुख पर आता है ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, ना पसंद, पसंदी ना पसंदी, ये दोनों बातें आ जाएंगी। कुछ देखने की चीज है, ना ये थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। खाने की चीज होंगी, नहीं ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, या ये पसंद है ये नहीं पसंद है। कपड़े है, सिंपल लाइफ बाबा ने दी है, परंतु सिंपल लाइफ में भी कहीं उसमें फर्क आ सकता, कहीं मार्जिन होती है। तो जब पसंदी ना पसंदी की बात आती है, आप सोचो कि ये जो मेरी इंद्रियां है, इंद्रियां बोल रही है पसंद है ना पसंद है, और उसमें भी फिर चलो ये तो सब एक्सटर्नल बातें हो गई, इंटरनल बात फिर क्या पहुंच जाती है, ये व्यक्ति पसंद है ये व्यक्ति पसंद नहीं है। जब ये बात आती है और यदि इंद्रियों के वश है तो उसमें सब बातें आएंगी, मनुष्यों के लिए भी हम ये कहेंगे हाँ इस व्यक्ति के साथ मेरी बनती है, इस व्यक्ति के साथ मेरी नहीं बनती, तो पसंदी ना पसंदी फिर उसमें आ जाता। तो उसमें तो आप सोचो कि कितना हम फूट डाल रहे हैं देवी परिवार में, पसंद है ना पसंद है, बाबा के बच्चे हैं तो उसमें एक परिवार एक प्यार का नाता। तो एक तो इस बात से हमें पता चलता कि हमारे मुख पर कौन सी बात है और क्या बात हम कर रहे हैं। दूसरा शब्द कौन सा आता, मैं राइट हूं, मैं जानता हूं, मेरा अनुभव कहता। तो जो ये अपनी आइडिया के लिए अटैचमेंट होती है उसको भी बाबा क्या कहेंगे, ये भी पहले तो अटैचमेंट देह का वो ही नहीं टूटा है, तो अपनी आइडियाज का अपने विचारों का वो भी अटैचमेंट जल्दी नहीं जाता, फिर उसको हम जस्टिफाई करते हैं सिद्ध करते हैं, परंतु मैंने ये अनुभव किया है ना तभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये मैं जानता हूं ना, आपको मालूम नहीं है, मैं जानता हूं। तो हम फिर उसमें और फोर्स लगा करके औरों को कन्विंस करने की कोशिश करते, परंतु जब भी कोई बात होती है, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, हर एक अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा, तो अच्छी बात यह होती कि सबकी बात सुन करके फिर ये पूछे कि बाबा इसमें क्या कहता। परंतु जब हम अपनी बात पर अटक जाते तो उसको भी कहेंगे देह अभिमान, मेरा मेरा विचार। तो एक तो देही अभिमानी स्थिति की पहचान की ना पसंदी पसंदी से पार, और दूसरा ये ना हम अटक जाए कहां पर भी कि मेरा विचार मेरी आइडिया ये। और फिर अशरीरी स्थिति और विधेही स्थिति। विधेही को मैं पहले उठाती हूं, परमात्मा के लिए कहते हैं विधेही, उनको ध्येय है ही नहीं, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर, कोई भी शरीर नहीं। तो शिव बाबा के लिए हम कहेंगे विधेही। और आत्मा जब परम धाम में है उस स्थिति को हम कहेंगे विधेही, देह से बिल्कुल पार। परंतु जब हम योग में बैठते हैं, यदि हमने देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया होता है दिन भर, तब जब योग में बैठो तो सहज सहज देह का भान छूट गया, आत्मा अपने देह से न्यारी होकर के अपनी निराकारी विधेही स्थिति का अनुभव कर सकती। तो विधेही स्थिति जब हम आत्मा देव को निराकारी स्थिति में अनुभव करते, देही अभिमानी स्थिति कार्य व्यवहार में भी ये चेक करने की बात होती है कि यहां से मैं देख रही हूं, यहां से मैं सुन रही हूं, या इंद्रियों के द्वारा अभी उनों का असर चल रहा है। तो देही में है परंतु देही अभिमानी स्थिति, और विधेही देह जैसे कि यहां है और आत्मा इससे न्यारी होकर के अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव कर रही। और तीसरी बात अशरीरी, शरीर है परंतु आत्मा डिटैच होकर के इस शरीर को भी देख सकती। फायदा ये होता कि मानो कि जब स्तन को कुछ हो रहा है, तो यदि हम अशरीरी होकर के बाबा को याद करके हम इस शरीर को भी बाबा की याद की सकाश देती हैं, तो इस स्तन को भी मदद मिल जाती। यदि हम शरीर के भान में हैं, तो उस समय दर्द ज्यादा लगता, परंतु अशरीरी हो जाओ तो दर्द को सहन करने की शक्ति आ जाती। बाबा दर्द को ले लेवे ऐसे नहीं होता, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ, योग अग्नि द्वारा जो हिसाब किताब हमने चुकतू किया वो तो बहुत अच्छा, परंतु अब जो बात सामने आई है अभी चुकतू करना है न कि आगे बढ़ाना है। तो उस समय अशरीरी बन करके शरीर को भी बाबा की लाइट माइट का सकाश दियो, तो शरीर को भी मदद मिल जाती, टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती और वो सहन शक्ति सहज बढ़ सकती। और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर का त्याग किया ऐसे, हाँ ये मालूम है सारी कहानी का कि कुछ कुछ दर्द बाबा को था, तभी फिर उस दिन सवेरे क्लास में नहीं आए, परंतु फिर सारी जो भी बाबा ने ईशु दादी को